संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूँ शिवानी काला। 30 सितंबर 2022 के बुलेटिन की सुर्खियाँ। यूक्रेन में रूस द्वारा काबिज इलाकों को अपनी सीमाओं में मिलाने की योजना, यूएन महासचिव ने की निंदा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिक्षण केंद्र पर हमले में अनेक हताहत। यूनिसेफ ने कहा शिक्षा केंद्रों पर हमले अस्वीकार्य। ईरान में हिजाब विवाद में महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शनों में मृतक संख्या बढ़ने पर चिंता। और टिकाऊ विकास लक्ष्यों और महिलाओं के प्रगति के लिए टेक्नोलॉजी की महत्ता पर यूएन विमेन की उप कार्यकारी निदेशिका अनीता भाटिया के साथ एक खास बातचीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे समाचार आपको हर दिन मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि यूक्रेन में रूस द्वारा पहले से काबिज 4 इलाकों को रूसी महासंघ में मिलाने की योजना एक गैर कानूनी कदम और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा जिसकी निंदा की जानी चाहिए। कुछ और जानकारी के साथ हैं यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि रूस ने शुक्रवार को राजधानी मॉस्को में एक आयोजन की घोषणा की है जिसमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया के क्षेत्रों को रूसी महासंघ में मिलाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। महासचिव गुटेरेश ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से कहा,
In this moment of peril, I must underscore my duty as Secretary General to uphold the Charter of the United Nations.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि जोखिम की इस घड़ी में मुझे महासचिव के तौर पर यूएन चार्टर को बनाए रखने के लिए अपने दायित्व को रेखांकित करना होगा। ये चार्टर स्पष्ट है, किसी एक देश द्वारा धमकी देकर या बल प्रयोग करके किसी अन्य देश के क्षेत्र को अपनी सीमाओं में शामिल करना यूएन चार्टर के सिद्धांतों व अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों को रूसी महासंघ का हिस्सा बनाए जाने के मुद्दे पर कुछ ही दिन पहले जनमत संग्रह का आयोजन हुआ और स्थानीय निवासियों ने एक मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। यूएन प्रमुख ने कहा कि ये तथा कथित जनमत संग्रह सशस्त्र संघर्ष के दौरान और यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में कानूनी व संवैधानिक फ्रेमवर्क के दायरे से बाहर कराए गए उन्हें लोकप्रिय इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक शिक्षण केंद्र पर हुए बम हमले की निंदा की है जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इसी सप्ताह अफगानिस्तान में हालात पर सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई जिसमें आगाह किया गया कि यदि तालिबान सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक ढंग से संपर्क व बातचीत में विफल रहा तो देश का भविष्य अनिश्चित है। एक रिपोर्ट के साथ हैं सचिन गौर।
नवीनतम समाचारों के अनुसार काबुल के एक ट्यूशन केंद्र पर हुए इस हमले में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। मृतकों में अधिकांश युवा महिलाएं हैं जो एक शिक्षण केंद्र पर परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी थीं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने अपने एक ट्वीट संदेश में बताया कि यह हजारा और शिया समुदाय बहुल इलाका है। मिशन ने इस हमले की निंदा की है और पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। समाचार माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलावर ने शिक्षण केंद्र के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई और फिर एक कक्षा में घुसते हुए बम धमाका कर दिया। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा है कि इस जघन्य कृत्य में बड़ी संख्या में किशोर व लड़कियां व लड़के हताहत हुए हैं। यूएन एजेंसी के अनुसार किसी भी शैक्षणिक माहौल में किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। इस बीच मंगलवार को अफगानिस्तान के लिए यूएन महासचिव के विशेष उप प्रतिनिधि मार्कस पॉटजेल ने सुरक्षा परिषद को सचेत किया कि लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिबंध जारी है और महिला अधिकारों के लिए पाबंदियां बढ़ रही हैं। उन्होंने आगाह किया कि यदि तालिबान अफगान समाज के सभी घटकों की आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रखता तो देश में दरारें चौड़ी होने, निर्धनता गहराने और अंदरूनी टकराव के और अधिक गंभीर होने की आशंका है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कामकाजी आबादी के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उपजी चिंताओं से निपटने के लिए ठोस उपाय किए जाने की पुकार लगाई है। एक अनुमान के अनुसार हर वर्ष मानसिक अवसाद और बेचैनी के कारण 12 अरब कामकाजी दिनों का नुकसान होता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 1000 अरब डॉलर का घाटा होता है। यूएन एजेंसियों ने बुधवार को अपने 2 विश्लेषण प्रकाशित किए हैं जिनमें कार्यस्थल पर नकारात्मक परिस्थितियों व संस्कृतियों की रोकथाम करने और कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण व समर्थन पर अनुशंसाएं जारी की गई हैं। ये पहली बार है जब यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण की सिफारिश की है ताकि कार्यस्थल पर तनावपूर्ण माहौल की रोकथाम हो सके और तनाव झेल रहे कामगारों को सहायता मुहैया कराई जा सके। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि ईरान में अधिकारियों को हाल ही में पुलिस हिरासत में मौत का शिकार होने वाली महिला महसा अमीनी के लिए न्याय की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना होगा। एक रिपोर्ट के साथ हैं सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने ईरान के प्रशासन से अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण सभाएं करने के अधिकारों का सम्मान किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महसा अमीनी की मौत के विरोध में प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रिया जारी है और संचार माध्यमों पर पाबंदी लगाई गई है जो कि चिंताजनक है। गौरतलब है कि 22 वर्षीय महसा अमीनी को राजधानी तेहरान में नैतिक पुलिस ने 13 सितंबर को हिजाब पहनने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में हिरासत में लिया था। 3 दिन बाद 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में हजारों लोग सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए। सुरक्षा बलों ने अनेक स्थानों पर अनेक बार जानलेवा बारूद व गोलियों का प्रयोग किया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान मृतकों का आंकड़ा बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफान दुजैरिक ने बुधवार को कहा,
The Secretary General calls on the security forces to refrain from using unnecessary or disproportionate force and appeals to all to exercise utmost restraint.
यूएन प्रवक्ता बता रहे थे कि महासचिव ने सुरक्षा बलों से अनावश्यक बल प्रयोग से परहेज बरतने और हालात ज्यादा भड़कने से रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें वार्षिक सत्र के अवसर पर दुनिया भर से सभी क्षेत्रों की अग्रणी हस्तियां न्यूयॉर्क में एकत्र हुई। यूएन न्यूज की प्रतिष्ठा जैन ने महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत संयुक्त राष्ट्र संस्था की उप कार्यकारी निदेशिका व सहायक महासचिव अनीता भाटिया के साथ बातचीत की और जानना चाहा कि महिलाओं के लिए तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है और इसकी सुलभता सुनिश्चित करने में यूएन वुमेन किस तरह कार्य कर रही है।
आजकल स्पेशली पैंडेमिक के बाद सारी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, तो अगर एक औरत के पास फ़ोन ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, वो सारी दुनिया में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती। तो इसलिए हम लोग यूएन वुमेन में कह रहे हैं कि एसडीजी 5 को रीच करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि औरतों के पास एक तो फ़ोन होना चाहिए, दूसरा उनके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और उनके पास ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पर जो मर्द हो उनके घर में उसको सारी टेक्नोलॉजी के यूज़ करने में सपोर्ट करें।
डिजिटल साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है, आप यह सुनिश्चित करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं?
यूएन वुमेन और यूएन इंडिया में बहुत काम करता है इस चीज़ इस टॉपिक पर, क्योंकि हम लोग को पता है कि दूसरे देशों के एक्सपीरियंस को देख के, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया का एक्सपीरियंस देख के, जहाँ इंडिया में इतनी डिजिटल लिटरेसी है, इतनी औरतें हैं जिनके पास फ़ोन है, ऑब्वियसली अभी तक बहुत काम करना है। सिर्फ 50% औरतों के पास फ़ोन है। हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जहां हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जैसे रिलायंस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं और इन पार्टनरशिप्स में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, जो प्रोग्राम्स हैं हमारे यूएन वुमेन के सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं हैं, हमारा काम लोकल लेवल पे पहुंचता है और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है कि अगर हमको इम्पैक्ट होना है, हमारा इम्पैक्ट सिर्फ शहरों में नहीं हो सकता है।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अब शिवानी काला को दीजिए इजाज़त।